शिव के जिद करने पर दीवा उसे लेकर पास ही के एक रेस्टोरेंट में आई थी। दीवा के साथ दो और मेडिकल स्टाफ की लड़कियां थीं। दीवा शिव को समझा रही थी कि वो खाने में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर ना करे, और इस बीच ऑर्डर लेने के लिए वहां कोई आया। वो कोई और नहीं, आर्यांश था, और उसकी आवाज सुनते ही दीवा तुरंत आर्यांश की तरफ पलट कर देखा। आर्यांश को इस तरह अचानक अपने सामने देखकर दीवा चौंक गई थी, जबकि आर्यांश एकटक उसकी तरफ देख रहा था। दीवा का ध्यान तब टूटा जब उसके साथ आई लड़कियों में से एक ने कहा, यार वैशाली, ये वेटर कितना हैंडसम है, तुम्हें भी लगता कि ये गलत प्रोफेशन में आ गया है? वैशाली ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी और जवाब में कहा, हाँ, लेकिन इसका ध्यान हमारे बजाय दीवा की तरफ है। उसकी बात सुनकर दीवा हड़बड़ा गई थी और उसने उसे घूर कर देखा। वैशाली ने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए थे। उसने महसूस किया कि आर्यांश अभी भी दीवा को ही देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान अब अपने हाथ में पकड़े नोटपैड पर था। तुम इसकी आवाज़ सुनकर चौंक गई थी और अब तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, क्या तुम इसे पहले से जानती हो दीवा? वैशाली ने पूछा। दीवा ने एक नज़र आर्यांश की तरफ देखा। दीवा ने अपना सिर झटकाया और जवाब में कहा, ये मेरा एक्स था जिसे मैंने छोड़ दिया। लेकिन छोड़ा क्यों, ये तो बहुत हैंडसम है, वैशाली ने हैरानी जताते हुए पूछा। कहीं आपने इसे इस वजह से तो नहीं छोड़ा डॉक्टर दीवा, क्योंकि ये गरीब है? उनके साथ आई दूसरी लड़की जिया ने कहा। बात गरीब होने की नहीं है, हमने कभी एक दूसरे से शादी का वादा नहीं किया था, और मुझे नहीं लगता कि मैं इस जैसे इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। किसी के साथ कुछ महीने बिताना और शादी करके पूरी उम्र बिताने में फ़र्क होता है, दीवा ने सख्त आवाज़ में कहा। आर्यांश ने गहरी सांस लेकर अपनी आँखें बंद कर ली थी। कुछ वक्त पहले उसने भी दीवा को सबके सामने यही कहकर छोड़ा था कि उसने कभी दीवा से शादी का वादा नहीं किया था, और थोड़े वक्त साथ बिताने और शादी करके उम्र भर साथ रहने में फ़र्क होता है। आर्यांश ने दीवा से इसकी उम्मीद नहीं की थी, साथ ही उसकी ये बोल्डनेस देखकर आर्यांश की आंखों के कोने में मुस्कुराहट तैर गई थी। वैसे भी वो कभी खुलकर नहीं मुस्कुराता था। न जाने कितने वक्त बाद दीवा ने इस तरह आर्यांश के चेहरे पर वो छोटी सी स्माइल देखी थी। अब क्या पूरा दिन यही बताने का इरादा है या ऑर्डर भी लोगे? जिया बोली। आर्यांश ने उनका ऑर्डर लिखा और तुरंत वहां से चला गया था। ऐसा लग रहा था जैसे जिया ने आर्यांश को वहां से भेजने के लिए सख्ती से बात की थी। जैसे ही आर्यांश वहां से गया, जिया ने दीवा का हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर दीवा, अगर आप उसे पहले से जानती हो और अब आपके बीच कोई रिश्ता नहीं है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ मेरी उससे बात करवा दीजिए, मुझे उसके गरीब होने से भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखकर उसे छोड़ा है? वो एक अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हें तो क्या किसी भी लड़की को डिजर्व नहीं करता है, दीवा ने उसे समझाते हुए जवाब दिया। न जाने क्यों जिया का इस तरह आर्यांश को अप्रोच करने पर उसे अजीब लग रहा था। कौन सा मुझे उससे शादी करनी है, थोड़े टाइम डेट करूंगी, उसे जानूंगी, अगर अच्छा लगा तो ही आगे बढ़ूंगी, पर प्लीज एक बार बात करके देखिए, जिया ने फिर से रिक्वेस्टिंग वे में कहा। दीवा को समझ नहीं आया कि वो उसकी बात का क्या जवाब दे। उसे इस तरह कश्मकश में देखकर भी वैशाली ने जिया को डांटते हुए कहा, जिया बस भी करो, अब तुम दीवा को फोर्स कर रही हो, और अगर वो किसी चीज़ के लिए मना कर देती है तो हो सकता है वो इंसान अच्छा ना हो। देखा नहीं, अभी भी दीवा को कैसे अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे उसे खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी समझता हो। दीवा ने भी वैशाली की बात पर सहमति में सिर हिला दिया था। जिया को चुप होना पड़ा। वहीं शिव उनकी बातें गौर से सुन रहा था, उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। इस बीच आर्यांश उनका खाना लेकर पहुँच चुका था। दीवा का ध्यान कहीं से भी खाने और शिव के ऊपर नहीं था। उसकी नज़रें बार बार आर्यांश की तरफ जा रही थीं, जो बाकी लोगों को सर्व कर रहा था, उन्हें टिप देने पर थैंक्स कह रहा था। जानबूझकर विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, दीवा ने बड़बड़ाते हुए कहा। कुछ ही देर में उनका लंच हो गया था, तो दीवा ने शिव को वैशाली और जिया के साथ भेज दिया था। कोई काम होने का बोलकर वो वहीं पर रुक गई थी, और जब उसने देखा आर्यांश किचन की तरफ जा रहा था तो दीवा ने भी अपने कदम उसके पीछे बढ़ा दिए थे। अचानक आर्यांश दीवा की तरफ पलटा और उसे अपने सामने देखकर सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। दीवा आर्यांश से बात करने का सोचकर उसके पीछे आ तो गई थी, पर उसे साथ ही ये भी नहीं समझ आया कि वो आर्यांश से क्या बात करे। कोई काम है, आर्यांश ने भौहें चढ़ाकर पूछा। तुम्हारी सर्विस बेकार थी और मैं तुम्हारी कंप्लेन करने वाली हूँ, दीवा ने जल्दबाजी में कहा। आर्यांश ने कंधे उचका दिए और फिर दीवा को मैनेजर की तरफ इशारा करके कहा, उनके पास जा सकती हो। इतना कहकर आर्यांश खाने की ट्रे के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी दीवा जल्दी से बोली, सुमन माँ आज हॉस्पिटल आई थी और उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आर्यांश को रोकने के लिए दीवा को इससे बेहतर बहाना नजर नहीं आया, और उसका ये तरीका काम भी कर गया। आर्यांश ने कदम वहीं पर रुक गए थे और वो वापस दीवा के पास आकर बोला, क्या हुआ है उन्हें? कोई टेस्ट या फिर सर्जरी वगैरह करवानी है तो मुझे बता दो, मैं उन्हें बाहर किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। इनिशियल टेस्ट में ठीक से डायग्नोज नहीं हुआ है, मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें बाहर की लैब से करवा दूंगी और बाकी सब भी देख लूंगी, दीवा ने शांत लहजे में कहा। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा,
आर्यांश ने रूखे अंदाज में जवाब दिया और जाने के लिए वापस मुड़ गया था। दीवा को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। वो बड़बड़ाकर बोली, अजीब बात है, इसे अभी भी किस बात का घमंड है? खुद ठीक से उनकी दवाइयों के पैसे तक नहीं दे पा रहा है और अब मैं जब हेल्प कर रही हूँ तो मुझे ईगो दिख रहा है। आर्यांश के इग्नोर करने पर दीवा उसे कोस रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आर्यांश जानबूझकर दीवा से दूर दूर भाग रहा था। जब आर्यांश ने दीवा की हेल्प लेने से इनकार किया तो दीवा रेस्टोरेंट से बाहर चली गई थी। आर्यांश की नजरें उस पर थीं और जैसे ही दीवा वहां से बाहर निकली उसकी आंखें सर्द होने लगी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को रोक कर रखा है, तो प्लीज ऐसा कुछ मत करो जिसके बाद मैं खुद को रोक ना पाऊं और तुम्हें मेरी हेल्प करने का पछतावा हो, दीवा गोयनका, आर्यांश ने धीमी आवाज में खुद से कहा। दीवा को भले ही आर्यांश का रूखापन नजर आ रहा था, लेकिन आर्यांश के लिए खुद को दीवा से दूर रख पाना आसान नहीं था। वो उसके बारे में सोचना तक नहीं चाहता था और पिछले दो दिनों में वो दो बार उसके सामने आ गई थी। आर्यांश अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी किसी की आवाज लगाने पर वो तुरंत गया। वहीं दूसरी तरफ दीवा भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। अच्छा, तो वेटर का काम करता है, क्या इसके घर वालों को इसके बारे में पता होगा? अगर मैं बता दूं तो वे आर्यांश को यहां से ले जाएंगे और उसे इस मुश्किल भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। इतनी सजा काफी है उसके लिए। अब तक तो उसे समझ आ गया होगा कि जिस पैसों का उसे घमंड था और ये लगता था कि अपने पैसों के दम पर वो किसी को भी खरीद सकता है, उन्हें कुछ लोगों के लिए दो वक्त का खाना खाने तक के लिए कमाना मुश्किल हो जाता है, दीवा अपने केबिन में चहलकदमी करते हुए बोली। दीवा अच्छे से जानती थी कि उसे किसे कॉल करना था, उसके बाद आर्यांश को यहाँ नहीं रहना पड़ता।
वहीं दूसरी तरफ दीवा की बातों ने आर्यांश को बेचैन कर दिया था। वो सिर्फ दीवा के बारे में ही नहीं सोच रहा था, बल्कि सुमन का सोचकर भी परेशान था। हाफ डे लेकर आर्यांश सुमन के पास घर पहुंच जाता। वक्त पर वो मेडिकल स्टोर का बिल चुकाने के लिए उनके पास पहुंचा। आर्यांश ने अपना पेंडिंग बिल पे किया और जाने से पहले सख्त आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि कई बार मुझसे पैसे देने में देरी हो जाती है, लेकिन प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे बारे में किसी को मत बताइए। हाँ, मुझे धानी से पता चला कि हमारे हॉस्पिटल में आई डॉक्टर यहाँ दवाइयाँ लेने के लिए आई थी और तुम भी उसी वक्त वहाँ पहुँचे थे। अनजाने में उसने तुम्हारे बारे में उसे काफ़ी कुछ बता दिया था। तुम तो उसका स्वभाव जानते हो, वो लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है, स्टोर के ओनर ने कहा, जो उस वक्त वहाँ मौजूद था। आर्यांश ने हल्के से सिर हिला दिया था। उसके पास कहने को कुछ नहीं था और वो तुरंत सुमन के पास पहुंचा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी हालत फिर से खराब हो रही है? आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये सब आप ही के लिए कर रहा हूँ और आप हैं कि मुझे ठीक से कुछ बताती नहीं, आर्यांश ने शिकायती लहजे में कहा। आर्यांश के बातों से सुमन समझ गई थी कि वो दीवा से मिला था। उसने आर्यांश की आंखों में देखा और धीरे से कहा, तो आप मिस गोयनका से मिले थे? आर्यांश की नज़रें नीची हो गई थीं, उसके पास जवाब देने को कुछ नहीं था। सुमन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, आप दोनों फिर से एक दूसरे से मिल लिए हैं तो आप उन्हें मनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने उन्हें खाने के लिए इनवाइट किया है, जब वो आएगी तब आप उनसे फिर से सॉरी कहना, मुझे पूरा यकीन है वो मान जाएगी और फिर आप दोनों शादी। सुमन की बात पूरी होने से पहले ही आर्यांश ने उन्हें काटते हुए सख्त आवाज में कहा, प्लीज़ सुमन माँ, वो सपने मत देखिए जो कभी पूरे नहीं हो सकते हैं और आप मुझे किसी तरह की झूठी उम्मीद मत दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे दिमाग में गलती से भी ये ख्याल आए कि मैं उसे फिर से हासिल कर सकता हूँ। मैं इस बार उसके साथ किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती करके उसे हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे से दूर रहें। इतना कहकर आर्यांश ने अपना हाथ सुमन के हाथ से अलग कर लिया था और उठते हुए बोला, डॉक्टर गोयनका ने जो भी टेस्ट रिकमेंड किए हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन बता दीजिए, हम कल ही चलेंगे। सुमन आर्यांश के सामने लाचार हो गई थी। उसे आर्यांश के लिए बहुत बुरा लगता था क्योंकि वो कपूर खानदान का इकलौता लड़का था और हमेशा से काफ़ी लाड प्यार से पला हुआ था। उसे इस तरह मेहनत करते देखना सुमन को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। काफ़ी खर्चा आएगा, आप अपने परिवार से मदद क्यों नहीं लेते? सुमन हिचकिचाकर बोली, मैं उनसे हेल्प नहीं ले सकता हूँ और ना ही उन्हें पता चलना चाहिए मैं कहाँ हूँ। अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी, आर्यांश ने टॉपिक को वहीं पर ख़त्म किया और फिर अंदर चला गया। आर्यांश चाहता तो अपने परिवार की मदद से अपनी ज़िंदगी आसान कर सकता था, लेकिन उसने आज तक अपने बारे में उनमें से किसी को बताया ही नहीं था। खुद कपूर फैमिली को 3 साल हो चुके थे जब उन्होंने आर्यांश से बात की थी। उन्हें आर्यांश के ठिकाने के बारे में अंदाज तक नहीं था। वहीं आर्यांश की जिद और इच्छा से बेखबर दीवा उसकी मदद के लिए इस वक्त कपूर फैमिली को कॉल लगाने जा रही थी। दर्ददाय, आर्यांश को एक झटके में तो अमीर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, अब उसका ईगो और एटीट्यूड सेल्फ रिस्पेक्ट में बदल चुके हैं। बाकी कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ रही है, तो बेहतर होगा कि आर्यांश को थोड़ा सुधरने देते हैं। बाकी मैंने आपकी इच्छा का भी ध्यान रखा है ताकि आर्यांश कहीं से भी वल्नरेबल ना लगे। चलिए, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।